ومن أظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے. یہ جو لفظ ہے نا ممن، یہ کیا تھا اصل میں، من پلس من. جب دو جمع ہوتا ہے نا، نون اور میم اکٹھا ہے تو پڑھا نہیں جا سکتا، منمم تو نہیں کہہ سکتے ہم، تو پھر یہ ادغام کی ایک صورت بن گئی، مم من اس شخص سے. منع جو روکتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا منع کیا، معنی کہتے ہیں رکاوٹ بننے والی چیز کو. کس چیز سے روکتا ہے؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. لفظ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد اسم ظرف ہے، جیسے وہ برتن آپ کو پیچھے بھی سمجھایا تھا نا جس میں چیز ڈالتے ہیں. تو آپ دیکھیے منزل، مکتب، تو اسم ظرف جو ہوتا ہے نا، یا پھر یہ مسجد کی صورت میں آ رہا ہے، یا پھر جی ان کی زبر کے ساتھ بھی یہ لفظ آتا ہے. جیسے مشرب پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کوئی جگہ ہوگی، کوئی چیز ہوگی یا برتن ہوگا. تو مسجد سے جمع مساجد اللہ ہی، مسجدیں اللہ کی. این یذکر فی اسمہ ہو، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا. روکی گزر سب نے آپ کو ادھر، کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اسی کے ذکر سے روکتا ہے؟ دیکھیے میرا گھر ہے، میرے گھر میں میرا ہی نہیں ذکر ہو سکتا، یہ مراد ہے. مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی حرکتیں مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روک دیتی ہیں. پہلا جرم، بس آف ہی خرابی ہا، اور وہ کوشش کرتا ہے اس کی خرابی میں، یعنی وہ اس کو خراب کرنا چاہتا ہے. یہ جو لفظ خراب آیا نا، یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں خرابی، خریبا، اخربا، کھیتی یا عمارت کا ویران کرنا، برباد کرنا. اردو میں آپ بولتے ہیں نا اجاڑ دینا، بے آباد ہونا، یہ وہی لفظ ہے. یہاں بھی یہ لفظ ہے، اور سورۃ الفتح میں بھی آپ یہی لفظ پڑھیں گے کہ یخربون بیوتہم، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے. اسی طرح خراب کرنے کے لیے عربی زبان میں فسد بھی آتا ہے، آسنا بھی آتا ہے، آبا بھی آتا ہے، لیکن یہ لفظ یہاں بہت اپروپریٹ ہے کہ ویرانی. اب یہاں جو ویرانی ہے یہ دو قسم کی لکھی ہے، ایک ہے کہ مسجد کو ڈھا دینا، مسجدوں کو گرا دینا، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینا، مسجدوں میں تالے لگا دینا. لیکن ایک دوسری خرابی ہوتی ہے، مسجد تو ہے لیکن اس کے اندر سے روح نکل گئی. جس وجہ سے مسجد جس چیز کے لیے بنی تھی وہ اللہ کی یاد تھی، لیکن مسجدوں میں جا کر بھی اللہ کی یاد نہ آئے، کیسے ہوتا ہے اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے. جو ظالم ہے اتنا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام نہ ہونے دے، یا پھر اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ اس لائق ہی نہیں کہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. یعنی ایسے لوگ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، ان کے لیے ہونا کہ اگلی آیت دیکھیے گا، لہم فی الدنیا خزیٌ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. کرو کیا پھر، وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مغرب اور مشرق، فاینما تولو، جدھر بھی تم پھیرو گے، فثم وجہ اللہ، تم وہیں پالو گے اللہ کے چہرے کو. سما کا لفظ آیا ادھر، یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے، پہلے ہم کیا لفظ پڑھتے آئے ہیں سما، یہاں سما کیا ہے، پا لینا، کسی چیز کو محسوس کر لینا، اسم اشارہ ہے، بعید کے لیے آتا ہے. سما پاؤ گے ادھر ہی کیا، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. بہت خوبصورت آیت ہے، پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے. پچھلی آیت میں فرقہ واریت کی بات تھی، لوگوں نے گروہی تعصب اتنا ابھارا کہ ایک دوسرے کو برا کہنے لگے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ مسجدیں ویران ہونے لگیں. اگر ٹیکسٹ کے اعتبار سے ادھر دیکھیے تو یہ آیتیں مکہ والوں کے خلاف ہیں. کیسے؟ خانہ کعبہ سے روکنا کسی کے لیے یہ عادت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب سفر کیا، یعنی جب آپ نے عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ کا سفر کیا، تو آپ کو حدیبیہ پہ روک لیا گیا. ایک تو اس کی طرف اس کا اشارہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا. مکہ والوں کا یہ جرم بہت بڑا تھا. آپ دیکھیے جب کسی مذہب کے ماننے والوں میں اس طرح کا بگاڑ شروع ہوتا ہے نا، تو بڑی سے بڑی بد عملی کرنے میں بھی وہ پیچھے نہیں ہوتے. سب سے بڑی خرابی جو کسی بھی قوم میں اسلام کے نام پہ ہوئی ہو، وہ کیا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو برباد کر دیا جائے. ایک ہے مسجد گرا دی، توڑ دی مسجد، خراب کر دی مسجد، یا मसलन आप देखिए, आपको पता है कि जब पंजाब पे सिखों का कब्जा हुआ तो उन्होंने बादशाही मस्जिद को इस्तबल बना दिया था, घोड़े बांध दिए थे उसमें जाकर। फिर इसी तरह आपने बाबरी मस्जिद का नाम सुना होगा, असल में वो मंदिर था, चिड़चिड़ाने के लिए लोगों ने उधर मस्जिद बनाई तो उन्होंने गिरा दी, तो कोई बुरी बात नहीं की। इस्लाम क्या सिखाता है कि इवन आप किसी जगह कब्जा कर रहे हैं, मुसलमान फातेह बन के एक इलाके में जा रहे हैं, अगर वहां चर्च मौजूद है, मंदिर मौजूद है, सिनेगॉग है, आप उसको नहीं छेड़ सकते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने जब बैतुल मकदस को फतह किया तो जो वहां का चर्च है उस में आपको इबादत के लिए ऑफर किया गया था। जो पादरी था उसने कहा कि आप नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, तो उमर ने कहा कि मैं इधर नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्यों, अगर मैंने इधर नमाज पढ़ दी तो बाद के मुसलमान इसको मस्जिद ना बना ले, तुम्हारा चर्च है तुम रखो, मैं बाहर जाके पढ़ लेता हूँ। अखलाक देखिए, हमारा दीन टॉलरेंस सिखाता है, बी टॉलरेंट, बर्दाश्त करो। दीन वालों में जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है, याद रखिए वो काफिरों फाजरों को अच्छा कहेंगे, उनसे हेलो हेलो, उनसे बहुत अच्छे रहना चाहिए, गवर्नमेंट से अच्छे ताल्लुक होने चाहिए, गोरों से मिलो, उनको बुलाओ, उनको इनवाइट करो, अपनी मस्जिदों में बुलाओ, और दूसरे मसलक आ ले तौबा करो, इनको तो हाथ ना याद है तो हाथ मिलाना पड़े तो हाथ धो लो, अगर ये बात कर दें तो इनकी बात को पीछे डाल दो। तो ये मिजाज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला नहीं चाहते कि लोग इस तरह से मस्जिदों से कटें। आप देखिए कि जिसका घर होता है आप उसके घर जाएं और वो वहां ना हो, दिल लगता? आप अपनी दोस्त के घर गई, चाबी भी थी आपके पास, चली गई, घर में नहीं है, खाने भी रखे हुए टेबल पे, फ्रिज भी भरा पड़ा है, आरामदेह चीजें भी हैं, क्या आपको मजा आएगा? आप कहेंगे नहीं, जिसको मिलने गई थी वो ही नहीं है। तो यहां से समझिएगा, दीनी इदारे, मस्जिदें, मैं अपने स्कूल को भी उसमें ही लूंगी, ये लोगों की जिस तलब को पूरा करती है ना, वो उनकी अल्लाह से मुलाकात है। आप किसी जगह में, किसी बिल्डिंग में, इदारे में, मस्जिद में आए और आपका अल्लाह की इबादत करने को दिल करे, आप अल्लाह की मोहब्बत महसूस करें, आप कुरान सीखें तो आपका दिल टूट जाए, आप नबी सल्लम का कुर्ब महसूस करें, आपको अपनी मौत याद आए, बस यही क्राइटेरिया ना उसके ठीक होने का। उन लोगों से ना जुड़े, ये मेरी इस्लामी बहन है, ये मेरी दीनी बहन है, ये मेरी कुरानी बहन है, ये हमारी जमाती बहन है, ये नाम नहीं अच्छे होते। आप जिस जगह, यानी आप नूरुल कुरान में आती है ना, अपने आप को चेक करें, क्या ये इदारा ठीक है, इनका कोई मसला, कोई मकीदा को ठीक है? तो सादा सा तरीका आपको बता दूं, आप एक हफ्ता आए बगैर किसी से कुछ कहे सुने, सुबह से क्लास में बैठे, जहां तक दिल चाहता है बैठे, उठ के चली जाए, फिर उस एक हफ्ते के बाद खुद को लेकर बैठे और पूछें कि मैं इस एक हफ्ते की सारी तालीमात के बाद किसके करीब हो रही हूं, क्या मुझे इस एक हफ्ते में अल्लाह की मोहब्बत आम दिनों से ज्यादा मिली, नबी सल्लम का कुर्ब लग रहा है, अपने गुनाहों की शिद्दत महसूस हो रही है, और मुझे मरने से डर लग रहा है। तो ये इंशाल्लाह सर्टिफिकेट है इस बात का कि जहां आप गए ना, वो चाहे अंदर से जी हुई क्यों ना हो, आपको उन्होंने अच्छी चीज दे दी है, बस आप वो लेके आ जाए, और आप कहीं जाएं और दिल और भी खुश है, कोई नहीं, गुनाह करने से कुछ नहीं होता, सिफारिश चलेगी, कुछ नहीं होता, शबे बरात में नफल पढ़ लेंगे और वो जाके खत्म दिला देंगे, और वो बाबा जी हमारे लिए ये काम कर देंगे, और गुनाहों पर दिलेरी महसूस करें, तो याद रखिए कि फिर खतरे की बात है। और लोगों से जुड़े, यहां आ रहे हैं तो मेरे से मोहब्बत हो जाए, यहां साथी जो आपकी खिदमत करते हैं आपको उनसे प्यार हो जाए, लेकिन आपकी नमाजें ठीक थी ना, आपका इखलाक अच्छा ना, आपके अंदर तकवा आ रहा है दिन ब दिन, तो फिर गड़बड़ है। हमारा हाल यह है कि हम दीन के नाम पे जहां उठते बैठते हैं, हमारी आपस की मोहब्बतें इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर वो पार्टी के मूड में हम सारा वक्त रहते हैं, और नुकसान क्या होता है कि हम अल्लाह से नहीं जुड़ते हैं। कोई आपको कुछ दे रहा है और आपको उससे फायदा हो रहा है, अकीदा नहीं बिगड़ रहा, अखलाक अच्छा हो रहा है, आमाल अच्छे हो रहे हैं, आप उनके बारे में एक जुमला भी ना बोले और आप उनसे फायदा लेकर आ जाएं, वरना याद रखिए कि गड़बड़ क्या होगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस वक्त मस्जिदों से, अल्लाह की याद से कैसे रोकती है। कोई लिटरली कहता है आपको कि मस्जिद में बैठ के जिक्र ना करो, नमाज ना पढ़ो? नहीं, ऐसे तो नहीं करता कोई, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किस तरह से रोकते हैं। मसलन आप देखिए कि जाहिरी तौर पे मस्जिद बहुत खूबसूरत हो जाए, पंप एंड शो, ग्लैमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब मस्जिदों का हाल क्या होगा, बहुत सजीवी होंगी, ऊंचे मिंबर होंगे, मस्जिदें जाहिरी तौर पे इतनी हसीन होंगी लेकिन रूहानियत नहीं होगी। आज भी आप देखिए ऊंचे मनारों के लिए लोग लड़ते हैं, मस्जिदें बनती हैं, अमेरिका में एक मस्जिद बनी, बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, एकदम लोगों ने उनके बारे में नेगेटिव बातें शुरू कर दी। मुझे जरा अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ये क्या बात है, ये लोग क्यों कर रहे हैं भाई, आप क्या मसला। कहती इतनी मुश्किल से फंड रेजिंग करके पैसे जमा किए इन्होंने, 8,000 डॉलर, तब की बात है काफी पहले है, $8,000 का इन्होंने डोम ऊपर मंगवा लिया है, डोम वो जो क्या होता है मेंबर गुम्बद, तो इसकी क्या जरूरत थी। वाकई सही बात है भाई, गुम्बद की क्या जरूरत थी आपको। कहते हैं नहीं, फुला मस्जिद इधर है उसका गुंबद है, तो हमारी मस्जिद का गुंबद नहीं होगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये मस्जिद है। फिर इसी तरह ये रिसेंटली मैंने किसी एक मुल्क की जगह को विजिट किया, तो वहां एक मस्जिद बनी, दे आर बेगिंग जस्ट लाइक ऐसे कि अल्लाह के लिए हमें चंदा दो। वो मस्जिद कहते हैं 3-4 साल पहले से शुरू हुई थी, शुरू में जो एस्टिमेशन दिया था वो बढ़ते बढ़ते आप उससे 4 गुना बढ़ चुका है, और अभी भी वो मस्जिद अंदर से कुछ नहीं है, बाहर है। मेरा ख्याल है कि उसमें लंबे और गोल छोटे मिलाएं तो 14 गुंबद उन्होंने खरीदे हैं उसके, कुछ लंबे गुंबद वो पतले पतले से होते हैं और कुछ डॉम। उन्होंने उसका एक ओपन हाउस रखा हुआ था, तो हम लोग भी विजिट कर देंगे। बिलीव मी, जैसे वो बादशाही मस्जिद में बरामदे हैं ना, नहीं सर्दी का इलाका होता है वहां बैठना नहीं, लेकिन वो गुंबदों के बरामदे और अंदर हॉल, मेरा ख्याल है कि शायद ये सारा हमारी जगह मिला लें तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो सारा पैसा बाहर गुंबदों में लग गया, और गुंबदों के नीचे बरामदे हैं, वॉकिंग है बस, बाहर है, गाड़ी से निकलो, बरामदों में घुसो और फिर अंदर आओ। भाई वो लोग कहते हैं बताएं ये सारा पैसा जो लगा ये हमें किस सवाब में देगा, लेकिन क्यों करना है कि गुंबदों वाली मस्जिद मशहूर हो जाएगी, ये गलत तरीका है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज देखिए कि मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र कब कम हो जाता है बंदे का, जब मस्जिदें गंदी होती हैं। अब यहाँ लफ्ज मस्जिद में बोल रही हूँ, लेकिन मेरी मुराद दीन के इदारे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं अपने आप को लूंगी, हमारा स्कूल। आप इस सारी जगह नूर कुरान लिख लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। मस्जिदों में जब बदबू आती है, गंदगी इतनी होती है, आपके ट्रैश भरे पड़े हैं, आप एक बाथरूम में जाकर देखें ऐसे लगता है बच्चों ने जिंदगी में पहली दफा टॉयलेट पेपर यूज किया है। मैं जब भी किसी मस्जिद के बाथरूम में जाऊं और वहां फ्लोर पे पानी और टॉयलेट के वे साथ इतने नीचे टिश्यूज और वो भरे हुए उनके बॉक्सेस देखूं, तो मैं एक सवाल जरूर पूछती हूँ खुद से, क्या ये अपने घरों में इतने ही टॉयलेट पेपर यूज करते हैं रोज? इतने बेचारे काले बड़े बैग भर भर के निकालते हैं एक फंक्शन के बाद, और आप अपनी मस्जिदों में जाके देखें हमारे मुल्कों की या अपने मुसलमानों की जगह, फसल टूटे हुए, पानी लीक कर रहा, फ्लश में जाएंगे तो बच्चों ने खेल खेल के पानी फ्लश में गिराया हुआ है, और खानों की खुशबू में यह भी इसमें खराबी है। बाज मस्जिदों के अंदर खाना पकता है, इतनी स्मेल होती है कि नाजुक मिजाज लोग हैं वो नहीं जा सकते। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मस्जिदों में जब फिरका वारियत की बातें होती हैं तो लोग मस्जिदों में नहीं जाते। आज बहुत सारे लड़के यंग, खास तौर पे आप उनको मस्जिद में जुमे को भेजें ना अपने बच्चों को, कहते हैं एंड पे जाएंगे, जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पता नहीं क्या बातें करते हैं, हमें समझ ही नहीं आती। मौलवी साहब को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो इतना चीख क्यों रहे हैं, दूसरों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मस्जिदों की वीरानी का जरिया बनती हैं, तफरकाबाजी। मोहब्बतों में दिल डूब जाए, अल्लाह की मोहब्बत बंदों की मोहब्बत में ढल जाती है, और जब कोई इस तरह करता है ना, तो वल्लाही अल्लाह ताला फिर उस जगह में बरकत भी बहुत देता है। तो जब भी कहीं भी आपको अल्लाह तौफीक दे, दीन के नाम पर आप एक कमरे का इदारा बनाएं या 100 कमरों का बनाएं, ये रूहानियत वहां कायम रखें कि लोग आए तो वहां उनका इबादत को दिल करे। आपकी ये कुर्सियां भी टेढ़ी हो ना तो मेरा दिल नहीं खुश होता, मैं कहती हूँ नहीं ये स्कूल आप चर्चों में जाके देखिए। आज भी अमेरिका में तो इतने आम है चर्च, आप देखिए डेलस शहर में आप जाएं शायद हर रोड पे आपको एक एक दो दो चर्च मिले, सबसे ज्यादा चर्च उस शहर में है, लेकिन उनकी सफाई, उनके बाहर के गार्डन, उनकी बातें, क्या खूब कहने की बातें। और हमारे अपने मुल्कों, यहाँ बाहर के मुल्कों में तो एक स्टैंडर्ड होता ही है, चले चूंकि यहाँ रख नहीं सकते वरना बंद कर जाएंगे वो आके, लेकिन यहाँ याद रखिए कि इख्तलाफियात और इन चीज़ों ने चीज़ों को ख़राब कर दिया। एक दफ़ा किसी नॉन मुस्लिम से ट्रैवलिंग में बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि मैं ओस्लो से हूँ, वो भी ओस्लो से ही थी, तो खैर बात शुरू हो गई, तो वो थोड़ा बहुत मुसलमानों को जानती थी। कहती यू आर टॉकिंग अबाउट दैट मस्जिद, वो जिनकी खबर आई थी वहाँ, जहाँ कुत्ते आए थे, वहाँ जो मुस्लिम्स की आपस में दो मुस्लिम्स की लड़ाई हुई थी। मुझे नहीं पता था तब, मैं नहीं नहीं इधर आई थी, तो उस दौरान एक नॉन मुस्लिम ने मुझे यहाँ किसी मस्जिद का बताया कि तुम्हें पता है यहाँ तो फाइट हुई थी और फिर पुलिस आई थी और पुलिस अपने वो जो इन्वेस्टिगेशन वाले कुत्ते अंदर लेकर आए थे। मैंने बाद में अपनों में से पूछा तो कईयों ने तस्दीक की कि हो गई थी लड़ाई एक दफा। ये मेयार नहीं है सादी, वो कहते हैं ना मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। आप पहले लोग तैयार करें, मस्जिदें, बिल्डिंगें, इमारतें खुद बनती जाएंगी। आज वल्ला ही वो लोग टेक केयरर के नाम पे मस्जिदों में होते हैं जो खुद भी 5 वक्त नमाज के पक्के आदि नहीं है, चेहरों पे सुन्नत नहीं है। ये सदर साहब है, ये फलां पूरी कैबिनेट बनती है, और ये सेक्रेटरी साहब है, और मस्जिदें रातों रात दो दो हिस्सों में क्यों बढ़ती हैं? मैनेजमेंट में झगड़े हो गए। ये मैनेजमेंट ऐसे टूट टूट के मस्जिदें बनाती है। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आज उम्मत के अंदर प्लेग की तरह फैली हुई हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। फिर दूसरी बात देखिए कि अल्लाह ताला की ये बात कितनी सच्ची हुई कि माँ का न लहुम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। वो मक्का काबा जहाँ से इन्होंने खुदैबिया के मौके पे नबी को रोका और जहाँ से हिजरत पे मजबूर किया, आज वहाँ कोई जा सकता है? आप में से जो भी हज उमरे से भी होके आया हो या पहले कभी गए हो, आपको पता है कि जद्दा से मक्का जाते हुए एक मुकाम जहाँ से तनीम शुरू होता है तो वहाँ रोक दिया जाता है हद की हरम की, कि नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम इससे आगे नहीं जा सकते, उनके लिए दूसरा रास्ता है। ये है सजा कि तुम चौधरी बन गए थे, तुम उस घर के मालिक बन गए थे कि अब हम किसी को आने देना दे। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कुफार को वहां आने से रोक दिया। लहुम फिर दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी रुसवाई है। फिर इसी तरह से अगर पिछली आयतों के साथ देखें तो आप देखिए कि क्रिश्चियंस ने भी एक दूसरे के इदारों को बहुत खराब किया। ज्यूस और क्रिश्चियंस का आपस में हाल क्या था कि जब उनके ऊपर वक्त आता था तो टीटस, टाइटस बोलते हैं उसको उर्दू में, टीटस या टाइटस रोम का था, रोमी मुशरकीन ने यहूद को बैतुल मक़दस में जाने से रोक दिया था। आपको पता है कि जब ये सामने आया तो इसने कहा कि कोई शख्स भी वहां पे नहीं जा सकता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहूद को बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ने से रोका था तो बुख्त नसर बाबुल का एक शख्स था, मजूसी था, फायर वर्शिपर था, बैतुल मक़दस को उसने आके खत्म कर दिया। और एक बड़ी करीब की मिसाल तो आप भी जानते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अब रहा नबी सल्लम की विलादत के साल में उसने खाना काबा को मिटाना चाहा, उसके पीछे भी क्रिश्चियंस का हाल था। तो क्या पता चला कि मस्जिद खेल नहीं है। सूरह तौबा में आप पढ़ेंगे इन्नमयामुरु मसाजिदल्लाहि मनामन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह की मस्जिदों को तो वही आबाद करते हैं जिनके अपने दिल अल्लाह से जुड़े हों और वो आखरत को याद रखते हों। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मस्जिदों में अल्लाह ही के नाम हो। सूरत नूर में भी आता है फी बुयूत नाज़ीन अल्लाह अन तुरफा व युज़कर फी हस्मु हो, कि अल्लाह कहते हैं कि उनके घरों में उन्हीं के नाम हो। फिर ये आप देखिए कि साफी खराबी हमें सा का लफ्ज़ बड़ा अहम है, कोशिश करके किसी चीज़ की खराबी करना। तो खराबी करने में जो बात हमने अभी तक देख ली है, इसमें ख़ास तौर पे आप देखिए कि कहाँ से वो अब्रहा अपने लश्करों को लेकर आया था और आके उसने बैतुल्ला को गिराने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं गिरा सका, अल्लाह ताला ने उसको वहीं से ख़त्म करवा दिया। और सूरत तौबा में अल्लाह ने हतमी तौर पे कह दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुश्रिकून नजस, ए ईमान वालों मुश्रिक नजस है, फला यक़रबुल मस्जिदल हरामी बादा आमिहिम हाजा, इस साल के बाद वो यहाँ नहीं आते। मैं एक छोटी सी बात और कर दूँ, आपको शायद फ़ायदा हो। मसलन आप देखिए कि किसी जगह कोई बुत रखा हुआ है या तस्वीरें पड़ी हुई, आप चले गए वहाँ, अब नमाज पढ़ें क्या करें, कैसे पढ़ें? सवाल समझे? किसी ऐसी जगह जहाँ कोई ऐसा मज़र है, शिरकिया चीज़ पड़ी हुई है, तो वहाँ की इबादत का क्या हाल है? तो मैं आपको इसका जवाब अभी दे दूँ, बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं। आप देखिए हालात पे डिपेंड करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, खाना काबा जो अल्लाह के नाम पे बना था वहाँ 360 बुत आ चुके थे, आपने एक बुत नहीं छेड़ा। हम जाके पहले सारे बुत छेड़ते हैं, अगले को चिड़चिड़ाएंगे। इबादत तो करते थे, नमाज फर्ज नहीं हुई थी लेकिन नफली इबादत तो होती थी, आप नहीं बोले। उसके बाद देखिए 6 हिजरी में आप हुदैबिया के मुकाम तक आए, वापस भेज दिए गए। 7 हिजरी अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं, सीरत को देख रहे हैं, तो 7 हिजरी में उमरा कजा हुआ, 3 दिन के लिए सहाबा और नबी सल्लम मदीना में, पूरा काबा बुतों से भरा पड़ा था, आपने उसी काबे में तवाफ किए थे। सारे शहर वाले बाहर जा चुके थे, आप चाहते पकड़ते तलवारें लेके या तीर लेके सारे बुत तोड़ते, नहीं किया। इस्लाम किसी को गुस्सा दिलाने वाला नाम नहीं है, डोंट बी रिएक्शनरी। अच्छा फिर क्या हुआ, 8 हिजरी आ गया, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। जिस दिन मक्का फतह हुआ, फतह मक्का हुई, उसके बाद एक बुत भी नहीं छोड़ा। ये है इस्लाम का मिजाज, आप पहले अथॉरिटी तो लें, आप किसी की कोई चीज छेड़ नहीं सकते। इस्लाम दूसरे को गुस्सा दिला के नेकियां करने का नाम नहीं है। सब्र, पेशेंस, बर्दाश्त, दिलों के बुत तोड़े, बाहर के खुद ही टूट जाएंगे। फिर इसी तरह एक और साइड पॉइंट है, यहाँ मुझे तो इतना रुझान ही नहीं मिला, सच्ची बात है, मैंने यहाँ मस्जिद कल्चर नहीं देखा। नॉर्वे की बात कर रही हूँ आपके, मर्द जाते होंगे, जुम्मे में जाते होंगे, ईदों पे जाएंगे, तरावियों में जाते होंगे, बट जहाँ से मैं आपके पास आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अमेरिका में इस वक्त सबसे ज़्यादा फैमिली बेस्ड जो मिलने की जगह है ना, वो मस्जिद है। मगरिब और ईशा, जो भी वहाँ की अच्छी फैमिलीज हैं ना, जैसे आप सब यहाँ के अच्छे फैमिलीज हैं, मगरिब और ईशा मियाँ बीवी बच्चे सब मस्जिद में पढ़ते हैं। फन भी है, बाहर बच्चों के लिए गेम्स होती हैं, खाने भी खा लेते हैं। हर महीने में एक फैमिली नाइट है, मतलब ये मस्जिद अगर हमारी, तो यहाँ हर महीने का पहला जुमा फैमिली नाइट है। अगर यहाँ फिरसत में एक मस्जिद है, तो उनके पास हर महीने का दूसरा जुमा जो है वो फैमिली नाइट है। सब लोग आते हैं, मस्जिद वाले कभी खाने का अरेंज करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन कहने का मतलब भी अब तारीख अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह और ऑफकोर्स कैनेडा में भी मस्जिद की बड़ी इज्जत है। वहाँ मैंने जितना ऑर्गेनाइज्ड और मस्जिदों का सेटअप देखा है, मैंने तो पाकिस्तान में भी नहीं देखा। पाकिस्तान में किसी को आप कह दें जी बच्ची का रिश्ता और है, लड़का इमाम है मस्जिद में, तो कहेंगे लो ये भी मांगेगा, इसको इसे भी मंगवाएगा, कोई खुश नहीं होता। अमेरिका में रिश्ते होते हैं तो फख्र से बताते हैं कि मेरा बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ाता है। छोटी यंग पौध लग गई है अब उसमें, माशाल्लाह आप देखिएगा बिग चेंज आ रहा है कि मस्जिदों ने ऐसे जोड़ा है। और वल्ला ही मैंने अमेरिका में 10-12 साल जो भी मैंने एक जगह टिक करी, मैंने वहां फिरकावारियत नहीं देखी। एक छत के नीचे सब है, एक स्केड्यूल जुमे का हर मस्जिद में जा रहे हैं, ईद की नमाज पे सब एक जगह है, वहां फिरके नहीं। कोई हनफी शाफई मसला नहीं, अगर आपको जो भी करना है अपने मस्जिद में करना, एक प्लेटफॉर्म पे है सब। लेकिन यूरोप में आकर तो मेरी आंखें खुल गई और मेरे हाथों के तोते उड़ गए। इतनी फिरका वारियत तो मैंने पाकिस्तान में भी नहीं थी सुनी जो मैंने आपके इस यूरोप में आके देखी है। एक इधर मस्जिद, एक इधर मस्जिद, एक इधर, एक इधर, इतनी वॉकिंग पे 8 मस्जिदें। जो हमारा नरबी घाटा का पहला स्कूल था, आपको भी पता ही है शहर में, तब नई नई आई थी, तो मेरे हस्बैंड को आदत है, वो माशाल्लाह मस्जिद में पढ़ते हैं, तो वहां खड़े होके 8 मस्जिदें सोच लें कि इधर जाएंगे तो इस मस्जिद गए होंगे, इधर जाएंगे तो इधर, 8 मस्जिदें एक ही जगह। वाह, बल्कि आप तो ज्यादा हो गई होंगी, क्योंकि सब ने उधर ही बनानी है। ये हमारे गांव की मस्जिद है, ये हमारे, मैंने अपने कानों से ग्रोसरी स्टोर पे खड़े मर्दों को बातें करने से कि वो साढ़े ग्रां की मस्जिद है, असं अपने ग्रां की मस्जिद जाना है, तुम साड़ी मस्जिद चढ़कर हूँ अपने चुट गए हो। ये बातें मैंने नहीं थी जिंदगी में कभी सुनी, जो मेरे कानों ने यहाँ आके सुनी है। लेकिन अंदर क्या है, अल्लाह नोज दी बेस्ट। ये सारी चीजें मस्जिदों को वीरान कर देती हैं। कैसे जाना चाहिए मस्जिद में, सवाल लिखे डरते हुए, अल्लाह की अजमत के एहसास के साथ मस्जिद में जाए। इसकी आपको मिसाल देती हूँ, अपने बच्चों को आप कैसे समझाया करें मस्जिद में जाते हुए। जैसे आप अपनी किसी दोस्त के घर जाएं जो बहुत अमीर है, उसने घर में खूब क्रिस्टल रखा हुआ है, बड़ी बड़ी है उसकी ड्राइंग रूम और वाइट कारपेट है और ऑफ वाइट कर्टन है, तो आप बच्चे को जाते हैं से पहले क्या कहेंगे, तमीज से रहना, हाथ ना गंदे करना, पाँव ना लेके जाना, उनके कुशंस ना खराब करना। डर लगता है ना कि भाई किसी ने हमें घर में बुलाया और हम उनके पर्दों से हाथ पोंछ के आ गए, अगली दफा हमें बुलाएगा। इससे भी ज्यादा अजमत होनी चाहिए मस्जिद के प्रेइंग रूम में जाकर। आप मेरे साथ चाहे पूरा महीना मस्जिदों में जाके देख लें, मैं बाहर गाड़ी तक या मस्जिद में दाखिल होने तक आपसे जितनी मर्जी बातें कर लूं, कि मस्जिद के प्रेइंग रूम में जाके मेरे से बात नहीं होती। ये मैं आपको अपनी वीकनेस बता रही हूँ, मेरा दिल ऐसे डर होता है कि नहीं, मैं एक मालिक के ड्राइंग रूम में आके बैठी हुई हूँ, या नहीं जो बात करनी है बाहर जाके करना, चलो उठो फिर इधर से आओ, बाहर गली में चले जाते हैं। लेकिन वहां बैठ के बातें, चीतें, खाने पीने, ये मस्जिदों की पुरानी है। दिल सख्त हो जाएगा अगर हमने इन चीजों की ताजीम ना की तो। और फिर खा, अगर इस नाम पे ही फन तमाशों के नाम पे बुलाने, लोग कहते खाना ना रखे तो लोग नहीं आते। अच्छा फन ना रखे, कुछ म्यूजिक म्यूजिक तो ना भी कहें, चले एंटरटेनमेंट ना रखे, तो बच्चे मस्जिदों में नहीं आते। तो आप मस्जिदों में अगर फन कह के बुला रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि फिर फन प्लेक्सेस में वो क्या करने चाहेंगे। तो लिहाजा मस्जिद की एक अपनी ताजीम है। जब तक मुसलमानों में ये रही, अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया, आज वो ख़त्म हुई। आज देखिए आप अपने मुस्लिम मुल्कों में जाएं, मुझे उधर भी अल्लाह ने बहुत जाने का मौका दिया, टूरिस्ट जाते हैं आप मुसलमानों की मस्जिदों में, इस्तंबुल जाके देखिएगा, 100 टुकड़े होंगे आपके दिल के, इतनी खूबसूरत मस्जिदें, बड़ी नमाज नहीं हो रही, बैठते हैं नमाज पढ़ के जाएंगे। पूछा पूछा कहते यहाँ नमाज कोई नहीं होती है, इतनी बड़ी मस्जिद में नमाज क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट है, नंगी टांगों वाली औरतें फिर रही हैं, मर्द आ रहे हैं, बैठे तस्वीरें खींच रहे, वीडियोस बन रहे, मस्जिद की हुरमत खत्म हो गई और हर मस्जिद के साथ कब्र देखी मैंने। तुर्की में तो बहुत देखा, मिस्र में भी बहुत देखा, मस्जिदों के साथ, हालांकि हुक्म ही नहीं है मस्जिदों में कब्रें बनाने का। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आज उम्मत के ऊपर एक जवाल पड़ा हुआ है। मस्जिद, कुरान और इस्लामी रिचुअल्स, ये दो तीन चीजें जो है ना, ये उम्मत के कल्चर को आम करती हैं। आज हमारे बच्चे बेचारे जिस दौर में से गुजरे हैं, वो शुक्र करें वो इस्लाम पे रह लें, क्योंकि हमने उनको कोई इस्लाम की खूबसूरत चीज तो दिखाई नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अपने आप को बचाओ। और ये जो खिज़्युन फिल हयात दुनिया है, इससे तो दुनिया में भी बचना है। नबी सल्लम ने एक दुआ सिखाई, आप भी मैं भी पढ़ें, और आज के दौर में तो उम्मत मुस्लिमा को बहुत ही जरूरत है पढ़ने की, कि अल्लाहुम्मा अक्सिना अक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा, कि अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा कर दे सारे कामों में, वजिरना मिन हिज़्ज़ दुनिया वज़ाबिल आखिरा, और हमें दुनिया के अजाब और आखिरत के अजाब से बचा के रख। आज तो ऐसी रसवाई पड़ी है, अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम कर दे। फिर ये जो विलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब है, इससे क्या मुराद है कि सिमतों को इतना ना सोचो। असल में ये जो आयत है ना, इसको लिख लें, आयत नंबर क्या नाम है, 115, 115 है ना। असल में इसका ताल्लुक हमारे साथ जुड़ेगा दूसरे पारे के पहले सबक के साथ। दो रुकू रह गए हैं बीच में सिर्फ, अब हमारे पास किबले की तब्दीली की तरफ इशारे शुरू कर दिए हैं कि बैतुल्ला हो या बैतुल मकदस हो, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। हम खाना काबा में भी जाके कोई काबा को सजदा थोड़ी कर रहे होते हैं। फलयाबुदू रब हासल बैत, कुछ हिंदू कहते हैं लो हमें तुम मना करते हो बुतों को ना पूजो, तो तुम भी तो पत्थरों के बने हुए घर को पूजते हो, तो आप कह सकते हैं नहीं हम उस घर को नहीं पूजते, रब हासल बैत उस घर के रब को पूजते हैं। हाँ जब अल्लाह की तरफ रुख करोगे, मशरिक मगरिब, मशरिक शरीका से सूरज तलू होने की जगह, और मगरिब गुरूब से अंधेरा अंधेरे की जगह, तो मशरिक माफ़ेल का वजन है जो पीछे भी आपको बताया था कि इसम ज़र्फ़ है कि जहां से सूरज निकलता है और मगरिब जहां से डूबता है। इशारा क्या है कि इंसान नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह के बताए हुए किबले की तरफ मुंह तो करेगा, लेकिन उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि फाइना तो वल्लुफ सम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह करोगे अल्लाह की तरफ पाओगे। इस आयत पे इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल नमाज सवारी पर पढ़ लेते, शुरू में किबले की तरफ मुंह करते, उसके बाद जिधर सवारी का रुख होता उधर ही करते, और दलील में ये आयत बताते थे फाइना मतवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, सही मुस्लिम की ये रिवायत है। और दूसरी बात है कि यहूद ने एक प्रोपेगंडा किया था, कहते थे कि मुसलमानों ने जो नमाजें बैतुल्लाह की तरफ करके पढ़ी थी ना मुंह करके, वो जाया हो गई, आप बैतुल मक़द्दस हो गया तो ठीक है। तो उस पर भी ये आयत उतरी थी कि नहीं, मशरिक मगरिब से कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला ने एक रुख दे दिया है यूनिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए, अदरवाइज इबादत तो अल्लाह के लिए ही करनी है। और सवाल पैदा होता है कि फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करोगे अल्लाह के चेहरे को पाओगे, क्या इसका ताल्लुक सिर्फ नमाज के साथ है? नहीं, जिस रब की तरफ नमाज पढ़ते हो उसी की तरफ मुंह करके अपनी इबादत को भी रखना है। और जब बंदे का रुख अल्लाह की तरफ होता है तो उसका हाल क्या होता है? नंबर एक, उसको अल्लाह की अजमत का एहसास होता है, फिर इंसान को ये यकीन होता है कि वो मेरी सुनता है। कभी आप घर में इसको ट्राई करिएगा, बिल्कुल खामोश, ऐसी जगह पे जहां कोई नहीं, घर वालों को भी बता दें और सारे इकट्ठे पढ़ेंगे ना तो शोर होगा भी नहीं, चले बच्चों मिलके नमाज पढ़ते हैं, बड़े बेटे को आगे खड़ा करते हैं, चलो मेरा बच्चा आज तुम पढ़ाओ, छोटों को पीछे चुप करके बिठा दो, बोलना नहीं है, जो हम पढ़ें तुम देखो तुम सुनो। घर में नमाज के वक्त कर्फ्यू की कैफियत होनी चाहिए, और फिर अच्छी आवाज में किरत हो, अजान हो, आप फसम वजहुल्लाह के असरात पाएंगे। हमारे घरों में चीखो पुकार, खाने बकरे, बच्चे चीख रहे, कहीं गंद है, कहीं स्मेल है, और हम कहते हैं अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस नमाज से कुछ नहीं मिलेगा। नमाज के लिए इख्तमाम करें, कपड़े अपने ऐसे रखें जिसमें आपका सतर ढका हो, आपके बार बार बाजू ही नहीं खुल रहे, कमर पीछे से उठ रही है, कपड़ा फिसल रहा है, दुपट्टा फिसल रहा है। और जब आप ऐसी नमाज पढ़ते हैं तो उसका एक और फायदा भी होता है कि इंसान को लगता है कि अल्लाह मेरी सुनता है, मेरी दुआओं को कबूल करता है। और आखिरी हिस्सा बहुत खूबसूरत है आयत का, जो मैं अपने इस पूरे टॉपिक की जान कहती हूँ अक्सर इसको, कि इन्नल्लाह वासिउन अलीम। मैं आपसे पहले पूछती हूँ, अल्लाह ताला के तो 99 नेम्स हैं, यहां ये दो नाम क्यों आ गए, वासिउन अलीम? यहां ये क्यों नहीं आ गया गफूरुर रहीम, अल वदूद, अल कहार, अल जब्बार? कोई बताना चाहेगा? जी आप।
یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت کا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے تم کس نیت سے کیسے اور کس طرف منہ کرتے جا رہے ہو.
اوکے اور کوئی؟ جی آپ میں بھی بات.
مسجدوں کا ذکر آیا تھا کہ مسجدوں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے،
دونوں کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سم اپ کر دوں، یہ دو خوبیاں دلوں میں لاؤ اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہے. نمبر ایک، وسعت قلبی لاؤ، تمہارے دل کھلے ہوں، دوسروں کو برداشت کرو، اور دوسرا علم لو. آج جو یہ فرقہ واری یا ٹولوں میں لوگ پھنس گئے ہیں نا، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، نیرو مائنڈڈ، ہم ٹھیک، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، اور علم ہے کوئی نہیں، وہ ایک چھوٹی سی چیز پڑھی اور اسی کو لے کے چل پڑے. تو جب انشاءاللہ امت میں یہ چیزیں آئیں گی، اس کے بعد اللہ کی رحمت ہوگی. تو یہاں بات کر کے اب آگے اہل کتاب کے ہی پھر شرک کی بات کر دی گئی.